क्लास की शुरुआत एक योग के प्रयोग से करें। सभी स्थिर बैठ जाएंगे, हाथों में जो भी चीजें हैं सभी नीचे रखें। इस प्रयोग में उन सभी आत्माओं आत्माओं को इमर्ज करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में हमें बहुत दुख दिया है, सताया, पीड़ा पहुंचाई, मानसिक वेदनाएं भी शायद पहुंचाई, शायद शारीरिक दुख भी दिया है, यानी कि अपमान किया है, निंदा की। उन सभी आत्माओं को इमर्ज करके क्या करेंगे उनको? आज का प्रोग्राम याद है मुरली का, हम सब कौन है? मास्टर क्षमा के सागर। चाहे किसने हमारे साथ कुछ भी किया या परमात्मा क्या है कि तुम रहम दिल हो, क्षमा के सागर की संतान, मास्टर क्षमा के सागर। आत्माओं को बेशर्त माफ कर, क्योंकि संसार की हम पूर्व जाते। दूसरा हम उन आत्माओं को इमर्ज करेंगे जिनको हमने बहुत सताया है, अपशब्द बोले हैं, व्यंग बाण छोड़े हैं, जिनके हृदय को हमने आहत किया है, जिनकी हमने ग्लानी की है, जिनका हमने अपमान किया था, जिनको परेशान किया, यातनाएं दी, अब वो हमसे नाराज है, क्रोध में, उनसे क्या करेंगे? क्या करेंगे? माफी मांगेंगे उनसे। और तीसरा प्रयोग, हम उन आत्माओं को याद करेंगे जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। हम हमारे उन लौकिक माँ बाप को भी याद करेंगे जिन्होंने हमें जन्म दिया। उन सभी आत्माओं को याद करेंगे, हम भूखे थे और उन्होंने भोजन दिया। हम असहाय थे, कोई सहारा नहीं था और जिन्होंने हमारी मदद की। ऐसे वो सभी आत्माएं जिन्होंने द्वापर युग में भक्ति में भी हमारी मदद की, वो सभी आत्माएं जिन्होंने हमारा कोर्स कराया, जिन्होंने हमें भगवान के पास मधुबन भूमि में ले गए और जिनकी वजह से परमात्मा मिलन हुआ, उन सभी आत्माओं को क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। तो सभी तैयार हैं? संपूर्ण स्थिर होकर बैठे, सूक्ष्म जन शरीर धीरे धीरे पंच तत्वों में विलीन हो रहा है। और बच गई हूँ केवल मैं अपने सूक्ष्म शरीर से, उड़ रहा हूँ आकाश, अंतरिक्ष से काम दूर और दूर, और पहुंच जाता हूँ सूक्ष्म सदन। स्वयं भगवान मेरे सामने खड़े, अभ्यक्त राम दादा, मुझे दृष्टि दे रहे हैं और इस दृष्टि से असंख्य वरदानों की वर्षा हो रही। करुणा निधान हो, करुणा सिंधु हो, इस संसार की आत्माओं के तुम पूर्वज हो, बाबा के भक्त, अनंत शक्तियों की किरणें उसमें समा, मैं देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने वो सभी आत्माएं खड़ी, ये वो आत्माएं जिन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, ये वो आत्माएं जिन्होंने मुझे बहुत सताया, पीड़ा पहुंचाई और प्रशंसा हो गए, विघ्न रूप बने, मेरी निंदा की, मेरी ज्ञानी की। मैं देख रहा हूं सभी आत्माओं को कितने उदास नजर आए, ये सभी वो आत्माएं जो कि मेरी उन्नति में बार बार बाधक हो, बार बार मेरे विरुद्ध षड्यंत्र हमने किया, ऐसी सभी आत्माओं को मैं आज देख रहा हूं और कुरान ये वचन मुझे याद आ रहे हे बच्चे, तुम क्षमा के सागर, तुम प्रेम सागर, मास्टर प्रेम के सागर, आज सभी आत्माओं को मैं तहे दिल से क्षमा करता हूं। इनमें से किसी भी आत्मा के प्रति अब मेरे मन में ना तो घृणा है, मैं देख रहा हूं कि ये सभी भी इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो मेरा ही हिसाब था। ये कर्म की कोई गति नहीं, इसके लिए आज मैं इन सभी आत्माओं को बेशक माफ करता हूँ। दूसरी ओर देखना असंख्य आत्माएं खड़ी है क्रोध से भरी। ये सभी वो आत्माएं हैं जिनको मैंने बहुत सताया। ये सभी वो आत्माएं हैं जिनकी मैंने गिलानी की, जिनका अपमान किया, जिन्हें मैंने परेशान किया, शारीरिक और मानसिक वेदनाएं पहुंचाई। हे आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो। मैं विकारों के वश था, संस्कारों के वश था। मेरी सभी भूलें, सभी गलतियां, सारे अपराध ये आत्माओं माफ कर दो। मैंने आज तक जो भी आपके साथ किया सब गलत ये आत्माओं मुझे क्षमा कर दो। और देख रहा हूं कि वो सभी आत्माएं धीरे धीरे प्रसन्न हो रही, उनका क्रोध उनकी नाराजगी समाप्त हो रही और सभी आत्माएं मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे दुआएं दे रही। तीसरी ओर मैं देख रहा हूं आत्माओं को, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने जन्म जन्म मेरी मदद की, मेरी सहायता की। मैं बीमार था तो मेरी सेवा की, मैं भूखा था मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था मुझे जल दिया, मैं दुखी था हताश था निराश था, मेरे जीवन में इन्होंने उमंग था। मैं देख रहा हूं इन बहनों को जिन्होंने मुझे सत्य ज्ञान दिया, मैं देख रहा हूं इन सभी बहनों को जो मुझे मधुबन दे गई और भगवान से मेरा मिलन कराया। मैं देख रहा हूं अपने लौकिक माँ बाप को, इन सभी का मैं कैसे धन्यवाद करूं। आज दिल सभी आत्माओं बारंबार मैं धन्यवाद करूं, शुक्रिया करता। पुनः मैं फरिश्ता बाबा के सामने कैसा हल्कापन महसूस होना चाहिए, सिर पे रखा बोझ जैसे समाप्त हो गए। ऐसी निर्भार और निर्बोझ अवस्था मैं डबल टाइट समझता और बाबा की दृष्टि देते धीरे धीरे पुनः सेवा में प्रवेश। किसी ने किया अभ्यास, माफ कर दिया कि सोच के रखा है हम नहीं करेंगे, उसको माफ करना चाहिए, हम क्यों करें, वो माफी मांगे, हम नहीं मांगेंगे, ऐसा किस किस ने सोचा। गलती उसकी है, पहले वो माफी मांगे फिर हम माफी मांगे। अपराधी का सबसे बड़ा दंड कौन सा है? अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड कौन सा है? क्षमा, क्षमा। रामचरितमानस में एक जगह लिखा है श्री राम का स्वभाव कोमल चित्त अति दीन दयाला, उसका चित्त अति कोमल है, दीन दयाला बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिना किसी कारण के कृपा करने वाला, ऐसा वो दया सिंधु कृपा सिंधु है। इस्लाम में अल रहमान अल रहीम कहते हैं, ओशन ऑफ कंपैशन, ओशन ऑफ मर्सी का नाम है क्रिश्चियनिटी में। ऐसा वो रहम का सागर है और हम सब उसकी संतान हैं, तो किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में घृणा नहीं हो सकती, द्वेष नहीं हो सकता, नफरत नहीं हो सकती। इस संसार की आत्माओं के हम पूर्वज हैं। यदि किसी ने हमें बहुत सताया है तो हमें उसे माफ करते हैं, चाहे कितना ही दुख किया। जीवन को नर्क बना के रखा है, परंतु वो हमारा ही हिसाब है। यदि हम उसके प्रति वैसा ही दुर्भाव रखें तो हम नया कार्मिक अकाउंट स्थापन कर रहे हैं। जो है वो है, जीवन में बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। कुछ लोग भी ऐसे जीवन में आए हैं जिनके कारण हम बहुत दुखी हुए हैं, परंतु उनके कारण से नहीं, अपने लिए हमें उन्हें माफ करना है, उनके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि यदि हमारे मन में कोई कांटा चुभा है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा एक प्रश्न है कि क्या जीवन में ऐसी अप्रिय घटनाएं जो भी है, क्या उन्हें बदला जा सकता है? क्या ड्रामा में ऐसा कोई प्रावधान सुविधा है कि जिससे जीवन में जो बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं उन्हें हम बदल दें? एक माता ब्रह्मा बाबा के पास आती थी, वो कहती थी कि बाबा मैं क्या करूं, ऐसा पाप हो गया है। जब यज्ञ पाकिस्तान से भारत आया तो बंटवारा हुआ, हजारों लाखों मर गए, लाखों घरों को आग लगाई गई। उस माता ने अपना अनुभव सुनाया, बाबा मैंने ऐसा एक पाप कर दिया है, जब मेरे घर में आग लग गई थी तो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे, सारा घर अग्नि में धधक रहा था और मैंने अपने स्वयं को बचाने के लिए अपने दोनों बच्चों को नीचे रखा और उसके ऊपर मैं खड़ी हो गई और कूद कर बाहर आ गई, दोनों बच्चे मर गए। क्या अब मैं ज्ञान में हूं, अब बाबा की बच्ची हूं, तो क्या जीवन में ये जो घटना हुई है इसे बदला जा सकता है? रामा कहता है नहीं। बाबा मैं क्या करूं, अपने ही छोटे छोटे दो बच्चों को अपने ही पैर के नीचे मैंने मार दिया, मैं बच गई और फिर ज्ञान में आ गई। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा? माताओं की तरफ से ब्राह्मण ने कहा, बच्ची यदि वो ना होता तो ये भी ना होता, यदि वो ना होता तुमसे और तुम इतनी दुखी ना होती तो शायद ध्यान में भी नहीं आती। दुख हुआ ना, पश्चाताप हुआ, उसके बाद ही तो सुख को ढूंढा और शांति को ढूंढा, और नहीं तो कहां कोई सुख में जो डूबा रहता है आता है। तो जीवन में जो कुछ हुआ है अब तक, सबसे फर्स्ट स्टेप है उसे स्वीकार करना विदाउट एनी कंप्लेन, किसी को भी दोष न देके, किसी को भी जिम्मेवार न ठहरा के, मैं और मैं स्वयं इसका जिम्मेवार हूं। जो भी दुर्घटनाएं जीवन में घटी है, कोई दूसरा नहीं, पर नहीं मैं, ये मेरा हिसाब किताब है। माता है बाबा से कहती है, बाबा हमारा पति हमको बहुत मारता है, उसकी बुद्धि के बुद्धि का ताला खोलो। बाबा का क्या उत्तर है? साकार मुरली, तुमने भी मारा होगा, तुमने भी मारा होगा, जो जो हमने किया है वही सामने आ रहा है। इसलिए जिन जिन आत्माओं ने हमें दुख दिया है उन सभी को माफ कर दो, क्योंकि किसी जन्म में हम किसी देश के राजा हुए होंगे और किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया, उस राजा को और उस राज्य को हरा दिया, कितने बेघर हो गए। किसी जन्म में जमींदार हो गए होंगे हम, किसी गरीब की जमीन हमने हड़प ली, सारा परिवार भूख और प्यास से मर गया और अभी वही बेटा बनकर आया है, पति बनकर आया है, सीनियर बनकर आया है, जूनियर बनकर आया है, बॉस बनकर आया है, एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आया है, मैनेजर बनकर आया है, तो क्या करने आया है? छोटा बच्चा जो घर पे आया है तलवार लेकर आया है, जो जो बच्चा घर में आया है किस लिए आया है? हिसाब किताब शुद्ध करने आया है, साक्षियों के सारे हिसाब किताब शुद्ध करने। जैसे जीवन की यात्रा है जन्म से मरण तक एक, दूसरी यात्रा है ब्राह्मण जीवन की, ब्राह्मण जन्म हुआ और लास्ट तक। तीसरी और एक यात्रा है, वो यात्रा है हिसाब किताब की यात्रा, कहां से हिसाब चालू हुआ और कहां तक एंड होगा, इसकी भी यात्रा है। कौन सी आत्मा जीवन में कब प्रवेश की, उससे हिसाब चालू हुआ, उसकी भी एक यात्रा है। और हर व्यक्ति की एक दूसरे व्यक्ति के साथ में एक गहरी यात्रा है, कड़ी यात्रा, वही ही दुख का कारण है बस, और कोई नहीं। तो हमें सबसे पहले तो जिसे स्वीकार करना है, दूसरा इस यात्रा को सुखद बनाना है, चाहे उधर से कुछ भी हो जाए, इधर से हमारी तरफ से कोई बंदे का भाव ना हो, उसने भले जो कुछ किया जो कर रहा है, क्योंकि वो हमने जो किया था वही सामने आ रहा है, इसके लिए माफ कर दो। जिन्होंने दुख दिया, सताया, षड्यंत्र किए, दान खींची, गलानी की, ऊपर ऊपर से बहुत मीठे शब्द बोले और पीछे से छुरा घोंप दिए, धोखा दिया, क्या करेंगे उन आत्माओं के साथ? बेशर्त क्षमा। एक विदेश की महिला ने अपना अनुभव लिखा है, अनुभव इतना अच्छा नहीं है। बचपन में के साथ सुकर्म किया। वो महिला बड़ी हुई और वो सर्जन बनी, बहुत बड़ी सर्जन। और एक दिन उसके हॉस्पिटल में वही व्यक्ति, वही पुरुष बुलेट इंजुरी के साथ आया, जो कि उसको किसने मार दिया था। अब उसके सामने ये प्रश्न था कि उसको बचाऊं या नहीं बचाऊं। उसने अपनी किताब में लिखा कि मैं सुबह जब चर्च गई और जीसस क्राइस्ट के सामने खड़ी थी, तो मैंने देखा कि जीसस क्राइस्ट नहीं, मैं खड़ी हूं उसकी जगह। और जैसे जीसस को, यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था, उसने अंतिम शब्द कहे थे, ये जो लोग हैं दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, उन्हें ये पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, हे मेरे पिता, इन्हें माफ कर दे। वैसे ही उस स्त्री ने देखा कि वो नहीं है, मैं खड़ी हूं वहां पर और मेरे सामने ये व्यक्ति है। उसने जो कुछ भी किया होगा मैं उसे माफ करती हूँ, उसके लिए नहीं अपने लिए, उसके लिए नहीं अपने लिए। क्योंकि यदि हमारे मन में कोई काटा चुभा है तो क्या हम योग की उन अवस्थाओं को उपलब्ध हो सकते हैं? क्या संपूर्णता की स्थिति तक पहुंच सकते हैं? अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 87 की मुरली में, यदि तुम्हारे मन में इस संसार की एक आत्मा के प्रति भी घृणा का भाव है तो तुम संपूर्ण नहीं बन सकते। तो आज की इस चर्चा में हम थोड़ी योग की चर्चा करें। एबीसीडी सभी को आती है? नहीं आती है, जिनको जिनको वो आज सीख लेंगे। योग तो सभी करते ही है, परंतु उस योग में हमें नवीनता लानी, उस योग में ऐसा कुछ करें कि जिससे सुबह सुबह नींद ना आए, सुस्ती ना आए, उमंग उत्साह आ जाए। तो हम चालू करते ए से लेकर झेड़ तक की यात्रा। सबसे पहला है ए, एक होता है उठ जाना और बैठ जाना। और अमृत वेला चालू, क्या कर रहे हैं वो हमें भी नहीं पता। कुछ तो कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं और फिर नींद, और फिर मैं आत्मा हूं, और करते करते 4:45 हो गए, काम पूरा हुआ, कारोबार पूरा, आगे चलो। एक तो ये है ए फॉर एम, एम अर्थात लक्ष्य। ए फॉर एम, हर दिन का जो अमृत वेला करना है उसका एक लक्ष्य हो, और वो लक्ष्य रात में ही निर्धारण कर दे कि कल का जो अमृत वेला है इसमें मैं ये काम करूंगा। मुझे इन इन आत्माओं को माफ करना है, इन इन आत्माओं से माफी मांगनी है, मुझे अशरीरीपन का अनुभव करना है, परम धाम में टिकना है, इस आत्मा को सकाश देनी है। सेंटर पर एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में नए लोग आने वाले हैं, वहां उस प्रोग्राम की सफलता के लिए मुझे उन आत्माओं को पहले से ही सकाश देनी है। शाम को किसी का कोर्स कराना है, वो आत्मा आने वाली है, सबसे पहले कोर्स उसका सूक्ष्म वतन में बैठ के कराना है, बाद में स्थूल। सुबह सुबह ही आत्मा को इमर्ज कर दो और उसको पाठ पढ़ाओ कि तुम आत्मा हो, और वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। सुबह ही कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, केवल कह दिया तुम आत्मा हो और वो स्थित हो गया। तो सबसे पहला है योग में एम, हर दिन एम निश्चित करना है कि कल मुझे क्या लक्ष्य से योग करना है। बिना लक्ष्य के अगर बैठ गए तो कोई अनुभव नहीं, कब 4:45 और 5 बज गए पता भी नहीं चलता है। एक कोई भी लक्ष्य ले लो, छोटा सा लक्ष्य हो, व्यक्तिगत लक्ष्य, मेरी पवित्रता खंडन हो रही है, कल सुबह का योग मैं पवित्रता के लिए करूंगा। आज इस आत्मा ने मुझे कुछ कहा और मुझे बहुत दुख अनुभव हुआ, ये जो दुख है जो चुभ गया है अंदर, इस घाव से मुझे मुक्त होना है। लक्ष्य ए फॉर एम, टी बी फॉर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग अर्थात वरदान, मुझे बाबा से कल वरदान लेने हैं। हर दिन बाबा से तीन वरदान लेने हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जो जो कमी है, जो जो कमजोरी है उसके लिए वरदान। आज मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की बातों में, कल बाबा से वरदान लेना है समय के लिए कि मैं समय को बर्बाद नहीं करूंगा। एक एक पल, एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है और मैं क्या कर रहा हूं। वरदान, उसमें मुख्य रूप से चार वरदान लोगों ले सकते हैं। पहला विजयी भव, किसमें विजयी, विकारों पर विजय। दूसरा विघ्न विनाशक भव, कि जो भी आज दिन भर में विघ्न है पहले ही वो विनाश हो जाए, समाप्त हो जाए। तीसरा सफलता मूर्त भव, जो भी सेवाएं करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, जो भी ड्यूटी पर जाएंगे, जो भी ऑफिस में काम करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट लेंगे, जो भी टारगेट होगा उसमें सफलता, जो भी एग्जाम देंगे उसमें सफलता। और चौथा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव, सब कुछ आ गया इसमें, बाप समान भी आ गया, कर्मयोग भी आ गया और फरिश्ता भी आ गया। तो बाबा से सूक्ष्म वतन में जाकर ये चार वरदान और इसके अलावा जो आपको लगता है मेरी कमी है वो, ये दूसरा काम। बी सी कन्वर्सेशन, इंग्लिश में कन्वर्सेशन अर्थात वार्तालाप, बाबा से रूह रिहान करना, क्या करेंगे भगवान से बातें करना। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो रोज मंदिर में जाता है और भगवान के सामने ए बी सी डी ई एफ जी एच कहता है जेड तक और आ जाता है। वो पुजारी एक दिन कहता है तुम ये क्या कहते हो, भगवान से क्या बातें करते हो, क्या तुम्हें प्रार्थना आती है, मैं तुमको प्रार्थना सिखाता हूँ। वो कहता है मुझे प्रार्थना वगैरह कुछ नहीं आती, मैं केवल ए बी सी डी कहता हूँ और भगवान से कहता हूँ कि तुमको जो प्रेयर बनानी है उसमें से बना लेना। कितनी उसकी भावनाएं हैं, भगवान को ये प्रिय है ज्यादा, उसको वो रटे रटाए शब्द वाक्य वो सब प्रिय नहीं है। बाबा तुम प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, शक्ति के सागर हो, बाबा ये कर दो वो कर दो, ये जो बहुत सारे रटे रटाए वाक्य है वो उसे इतने पसंद नहीं है। क्या पसंद है उसे, प्रेम भरी बातें, प्रेममयी वार्तालाप, हार्ट टू हार्ट टॉक, रूह रूहान रूह रिहान, ये उसे प्रिय है। तो क्या करना है बाबा के साथ, बातें करनी है। क्या बातें करेंगे अभी वो बताओ, माता है क्या क्या पूछेंगे बाबा को, बाबा कहते हो सब ठीक ठाक तो है, क्या पूछेंगे बताओ, क्या बात करेंगे बाबा के साथ, कोई भी माता बताओ, या जो करते हैं वो तो बताओ, ऑलरेडी जो बात करते हैं वो बात बताओ, कुछ तो करते होंगे कि नहीं करते हैं, क्या क्या कहते हैं, मैं जो हूं, मैं जैसी हूं आपकी हूं, आप संभाल लो, और क्या करते हैं, क्या जो बोलिए, कोई भी बोलिए, क्या बातें करते हैं, क्या बात करते, आप सर्वशक्ति होगी, बाबा कहेंगे मुझे पता है, और क्या बात करते हो बताओ, बाबा कहेंगे मुझे पता है। मैं बाबा का रॉयल बच्चा हूँ, बाबा को क्या कहेंगे, बाबा मैं आपका रॉयल बच्चा हूँ, बातें क्या क्या करते हो, हाँ उसके बारे में बाबा को बताते, हाँ ये एक है, बाबा को चार्ट देते हैं, बाबा से बात करना, बाबा भाग्य को याद करना, कहाँ हम थे, कितना हम भटक रहे थे, कैसे तुमने हमें बचाया, अपने भाग्य को याद करना, खजानों को याद करना, प्राप्तियों को याद करना, उपकार तुम्हारा हे बाबा। इन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है कैसे मैं समझाऊं, कैसे मैं समझाऊं। बरसदास बरस जाता है नैनों से, वो समझाया नहीं जाता। पाना था तो पा लिया, प्रेम भरी बातें, उसके एहसान को याद करना, क्या हम थे और क्या तूने बना दिया, उसका शुक्रिया। तो सी फॉर कॉन्वर्सेशन, डी फॉर ड्रेस, अलग 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 ड्रेस पहनना। कौन कौन से ड्रेस दिए हमारे को बाबा ने, कितने ड्रेस दिए? फरिश्ता ड्रेस दिया है, और कभी फरिश्ता ड्रेस पे बाबा से बात करो, कभी स्वर्ग में चले जाओ और देवताओं का ड्रेस पहनो, कभी ब्राह्मण ड्रेस, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस। कितने सारे ड्रेस हैं हमारे पास, पूज्य स्वरूप, देव स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, कभी बिंदु रूप, अलग अलग ड्रेस। एक ही तरह से बाबा से मिलन नहीं मनाना, हर दिन नए नए मिलन। कभी फरिश्ता स्वरूप में जाओ और उससे सूक्ष्म वचन में मिलन मना, अलग अलग जगह पर, कभी यहां तो कभी वहां तो कभी वहां। पिता जमीन पर आए कभी, कभी बच्चों को पुकारे, इस रूहानी मिलन से रूहे तृप्ति पाए। नए नए ड्रेस पहन, एक एक समान एक एक ड्रेस है। तो डी फॉर ड्रेस, फिर है ई फॉर एनर्जी, सी फॉर एनर्जी, ऊर्जा शक्ति। क्या करना है, आत्मा में शक्तियां भरनी है अमृत वेला, चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे परमधाम में। मैं आत्मा परमधाम में हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे ऊपर, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां मुझने समा रखी, उसकी आंखों से या तो सूक्ष्म वतन में, आंखों से त्रिकुटी से सर्वशक्तियां मुझ आत्मा में आ रही। ई एफ, एफ अर्थात फॉर्म, स्वरूप, अलग अलग स्वरूप में बाबा से मिलना। कभी छोटा बच्चा बन जाओ और उस रूप से उससे मिलो, कभी स्टूडेंट बन जाओ और उससे मिलो, अलग अलग स्वरूप धारण करना, अलग अलग रूप धारण करना और उससे मिलना। कभी कोई पेशेंट ही बन जाए, और वो कौन है, सर्जन है, इतने डॉक्टर दिखा दिए पर ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें। यामि गुरु भव भय वैद्यम, भव ये जो संसार सागर है, रोग है भव रोग, उसका वो वैद्य है, वैद्यनाथ वैद्यनाथ, सुप्रीम सर्जन। अलग अलग रूप से उससे मिलन मनाना, रोज एक ही रूप नहीं, हर दिन नया नया रूप। कभी हम मांझी है और डूब रहे थे और वो आया और उसने बचा दिया, उसी दम तेरा वो आना बचाना न भूल पाएंगे। तेरा एहसान हो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हम बगिया में थे, फूल थे, मुरझा गए थे, वो बागवान बनकर आया, अलग अलग रूपों में उससे मिलन मनाना। एफ जी फॉर गाइडेंस, जीवन में समस्या इतनी है, इतनों के पास गए, किसने कहा ये करो, किसने कहा वो करो, कोई बताता नहीं ढंग से क्या करना है, तो किसके पास जाएंगे अब। सुप्रीम गाइड कौन है, एक बाबा, फाइनल आंसर उसके पास से ही आएगा। मनुष्य चाहे कितनी भी हमें गाइड करे, परंतु हमारा गाइड कौन है, उसको छोड़ के हम किसके पास जा रहे हैं। वो खड़ा है देने के लिए, हजार बुझा वाला एक तरफ है, दो बुझा वाले एक तरफ। अव्यक्त मुरली में बाबा ने एक बार प्रश्न पूछा था, एक तरफ है हजार बुझाव वाला, दूसरी तरफ है दो बुझाव वाले, जब हजार बुझाव वाला खड़ा है तो दो बुझाव वाले के पास जाते हो क्यों, बताओ। इन्वर्टेड कॉमा अव्यक्त महावाक्य, भगवान ने प्रश्न पूछा है, जब मैं खड़ा हूं तो क्यों जा रहे हो। कृष्ण ने भी यही प्रश्न द्रौपदी से पूछा था। बाइबल में एक जगह वर्णन है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ जा रहा है, गैलिली की झील है वो, और जीसस क्राइस्ट एक जगह सोया पड़ा हुआ है और सारे शिष्य बैठे हैं नाव में, 12 शिष्य, और अचानक तूफान, अचानक आंधी आने लगती है, नाव हिलने लगता है, डूबने लगता है, पानी नाव में आ जाता है, सारे शिष्य भयभीत हो जाते हैं, क्या करे क्या नहीं, और देखते हैं कि मास्टर, उनका जो गुरु है, उनका जो टीचर है, प्रभा है जिसको कहते हैं, वो जीसस क्राइस्ट सोया पड़ा है, उसको कहते हैं, मास्टर प्लीज गेट अप और हमको बचाओ, देखो ये क्या हो रहा है। वो खड़ा होता है और केवल हाथ करता है, पीस पीस स्टिल, शांति शांति, और तूफान थम जाता है। वहां पर एक वाक्य आता है बाइबल में, ए कम ईमान वालों, ओ ही ऑफ लिटिल फेथ, क्या इतना भी विश्वास नहीं कि जिस नाव में मैं बैठा हूं क्या वो डूब सकती है। ए कम ईमान वालों, क्या इतना भी तुम्हारा विश्वास नहीं, किस नाव में बैठे हो, ओ ही ऑफ लिटिल फेथ, जहां मैं बैठा हूं क्या वो नाव डूबेगी। संगम की नाव को कौन चला रहा है, उसमें हम बैठे हैं तो क्या वो डुबा देगा। तो गाइडेंस किससे लेंगे, क्या वो देता नहीं, देता है जी, एच एच अर्थात हिम्मत। हिम्मत किससे लेंगे, एक से। क्या संसार की आत्माएं हमें हिम्मतवान बना सकती है, खुद ही हिम्मत नहीं है उनमें। हिम्मत किससे लेनी है, हिम्मत का सागर है वो, करेज। जीवन में हिम्मत की आवश्यकता, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसमें सब कुछ फेल हो जाता है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, असहाय, निर्बल, वीक, उस समय हिम्मत का वो एक ही किनारा है। जे आई आई ए बी सी डी ई एफ आई आई अर्थात इनसाइट, इंग्लिश में इनसाइट को अंतर्दृष्टि हिंदी में कहते हैं, अंतर्दृष्टि अर्थात चीजों की तरफ देखने का हमारा आंतरिक दृष्टिकोण या गहरी समझ, वो समझ जो इनसाइट जिसको कहते हैं, वो कहां से आएगी, उसके द्वारा आएगी। जीवन में बहुत भयंकर परिस्थिति आई और चली गई, अब हमें ये देखना है इससे क्या सीखना है, वो इनसाइट उसकी तरफ देखने का, आय अर्थात अंतर्दृष्टि, इनसाइट, वो अंतर्दृष्टि चीजों को परखने की, समझने की, वो केवल उससे ही आएगी। तो अमृत वेला वो इनसाइट उससे ले लेनी है, आय। उसके बाद में जे, जे अर्थात क्या कहेंगे आप बताओ, जे जे जेस्ट, जेस्ट ओके, जेस्ट तो एक जेस्ट अर्थात मजाक भी होता है, और जॉय, और क्या कहेंगे, जे अर्थात
जस्टिस,
जस्टिस, और जज, और जय अर्थात कोई अच्छा है इससे भी?
हाँ,
जर्नी, राइट, जे अर्थात जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, अमृत वेला एक जर्नी पर निकल जाना है, एक यात्रा पर। बाबा इसे याद की यात्रा कहते हैं। तो हमें एक यात्रा करनी है, एक लंबी यात्रा, जो इस संसार से हम परे चले जाए, कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम, कभी सतयुग, कभी द्वापर युग। द्वापर युग में क्या करेंगे माताएं? द्वापर युग में क्या स्वरूप देखेंगे अपना? मैं कौन हूँ? शेर पर सवार कौन? दुर्गा हूँ। और यदि वो दुर्गा शेर पर सवार भयभीत हो जाए खुद ही, तो वो शेर पर सवार है पर जीवन में परिस्थिति है और बाबा से कह रही है बाबा, तो भक्त क्या करेंगे? ये दृश्य कैसा है कि एक देवी शेर पर सवार है और वो भाग रही है और चिल्ला रही है बाबा बाबा बाबा, और पीछे भक्त तो मां मां मां, कैसा दृश्य है? अच्छा है नहीं? भक्त कहेंगे हे जगत जननी माँ, हे शारदे, हे जगत तारिणी पाप नाशिनी, हे दुर्गा, हे अम्बा, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, हे जगन माता। और माँ क्या कह रही है? बाबा ये बहुत सताता है मुझे, इसको कुछ करो। बाबा ये बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते, इनका कुछ करो। बाबा मेरे पति के बुद्धि का ताला खोलो। और भक्त पीछे से आ रहे हैं। एनिमेशन अगर किसी को आता है तो बना सकते हैं। तो जर्नी, यात्रा पर निकल जाना अमृत वेला, ये सोचो कि मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं आज, जर्नी। फिर उसके बाद है के अर्थात किंगडम। पूरा एक अमृत वेला कभी कभी सतयुग में बिताओ, केवल सतयुग। क्या क्या देखेंगे? पुष्प विमान कैसे हैं, महल कैसे हैं, वस्त्र कैसे हैं, महल कैसे हैं, दिनचर्या कैसी है, पशु कैसे हैं, पक्षी कैसे हैं, पहाड़ी कैसी है, नदियां कैसी हैं। दूध हेलीकॉप्टर से आएगा, साकार बोली में था कभी। यहां सुखों के पहाड़ गिरेंगे, वहां सुखों के पहाड़ खड़े होंगे, साकार महावाक्य। उस सतयुग को देखो, अपने स्वरूप को देखो, राज दरबार लगा हुआ है, देवताओं की सभा है, चारों ओर स्वर्गिक छटा है, आसमान में पुष्पक विमान उड़ रहे हैं। मरना शब्द दुख का है, कल की साकार मुरली। वहां पर एक शरीर छोड़ेंगे और किशोर शरीर को धारण करेंगे, मरना शब्द वहां नहीं होगा। सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र, एक छत्र साम्राज्य, एक सम्राट और एक साम्राज्ञी। उस कृष्ण के साथ मैं हूँ, उस राधा के साथ मैं हूँ, उस राजमहल में मैं हूँ। अलग अलग दृश्य, कितना सुंदर दृश्य है, खेल रहे हैं वहां पर, रात खेल रहे दृश्य में। तो किंगडम के बाद एल, एल अर्थात लैंग्वेज। रोज एक ही एक भाषा में योग नहीं करना है, अलग अलग शब्द, अलग अलग भाषा, अगर एक से ज्यादा भाषा आती हो किसको तो उन भाषा का भी प्रयोग करना है, ताकि नवीनता आए, उसमें कुछ इंग्लिश के शब्द भी हो, नए नई भाषा, नए शब्द, नए वाक्य। एक ही एक रटा रटाया, बाबा तुम प्रेम के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, आनंद के सागर हो, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। 10 साल पहले जो कमेंट्री सुनी थी जब ज्ञान में आए थे, वो कमेंट्री अभी भी वही चालू है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, योग में सेम चालू है। लैंग्वेज भी बदल देनी है, भाषा भी थोड़ी बदल देनी है। जे एल एम, एम फॉर मेकअप, एम फॉर मेकअप, किससे सजाना है स्वयं को अमृत वेला? गुणों से, शक्तियों से, एक एक कुंड ले लेना एक दिन के लिए सहनशीलता। आज मैं सहनशीलता का गहना पहनती हूँ और सारे दिन पर यह गहना रहना चाहिए, कोई छीने ना फिर दिन पर, नहीं तो शाम को कहेंगे आप किसी ने आके छीन लिया। गुणों के गहने, शक्तियों के गहने, आज सहनशीलता का गहना पहनना है। चाहे कुछ भी हो जाए सहनशीलता को छोड़ेंगे नहीं। मैं सहनशीलता की देवी हूं, मैं सहनशीलता का अवतार हूं, समान है। एम एम के बाद एन एन अर्थात नशा, हिंदी शब्द नशा। स्वयं को क्या चढ़ाना है? नशा चढ़ाना। नशे के बाद व्यक्ति कैसा होता है इस संसार में कोई उनकी खबर नहीं होती है। चलता भी कैसे, उसकी चाल भी बदल जाती है जब नशे में कोई व्यक्ति चलता है। कोई कितना भी गालियां दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे रूहानी यक्कड़ों की यह सभा है। जिन्हें रूहानी नशा, नारायणी नशा, इलाही मस्ती, रूहानी मस्ती, अलौकिक मस्ती, परमात्मा मस्ती, गॉडली इंटॉक्सिकेशन जो चढ़ा है, ऐसा स्वयं को नशा चढ़ा है। अपनी प्याली को इतना भर दो इस रूहानी शताब से कि फिर ये संसार यात्रा है। एन ओ
ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट
ऑप्टिमिज्म, ओके। और ओपा ओपर ओबीडियंट, ओपर गुणों वाली लिस्ट नहीं बताना, वो दूसरा है, नहीं तो गुणों वाली लिस्ट चालू हो जाएगी 36 पर, वो नहीं, कुछ दूसरा बताओ। ओपर ओपर
ऑपरेटर,
ऑपरेटर शिव बाबा ऑपरेटर है, वो हमको ऑपरेट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी, राइट, ओपर अपॉर्चुनिटी याद करना है, ये मुझे अवसर मिला है अमृत वेले का। ये हम योग के प्रयोग की एबीसीडी कर रहे हैं, गुणों वाली एबीसीडी नहीं है। योग के प्रयोग में अवसर को याद करना है, ये समय कौन सा है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है भगवान से मिलन बनाने की, ये चांस मिला है तो मैं इसे गंवा नहीं सकता, नींद में नहीं गंवा सकता। इसे अलर्ट करना है, स्वयं को जागृत करना है, चेतना बिल्कुल स्वयं जागती ज्योत बन जाए। यदि हम ही डोल रहे हैं तो जगत को प्रकाशित कैसे करेंगे? डोल फॉर अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अवसर मुझे बाबा ने दिए वो सारे अमृत वेले याद करना, बाबा के सम्मुख बैठकर, तो शक्तियां बढ़ेगी। ओ के बाद पी, पी फॉर प्लेज, प्लेज अर्थात प्रतिज्ञा। अमृत वेले क्या करना है? प्रतिज्ञा करनी है बाबा के सामने। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे, कौन सी प्रतिज्ञा करेंगी माता है बाबा के सामने, क्या प्रतिज्ञा करेंगे? एक कोई भी प्रतिज्ञा बताओ, कभी तो बहुत है पर एक बताओ।
क्या 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 प्रतिज्ञा करेंगे? मैं पवित्र हूं और पवित्र रहूंगी, सबसे बड़ी पवित्रता की प्रतिज्ञा है। जो हुआ वो हुआ, पर आज अब के बाद मेरी ये देह, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र रहेगी रहूंगी। ये देह भोग विलास के नहीं है, ना तो मेरे और ना किसी और के। ये देह उसको दिया है, क्या की सीरीज चल रही है बाबा की मुरलियों की, लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, देहभान का त्याग, क्या कहते हो, तन मन धन सब तेरा, तो तन किसका है, मेरा, आंख मेरी, बाकी सब उसका, बाबा ने उसी मुरली में प्रश्न पूछा था, क्या ये मनमत है या श्रीमत है? तो प्रतिज्ञा, जो जिसकी कमजोरी है उसकी प्रतिज्ञा करनी है। ज्यादा बोलने की आदत है उसकी प्रतिज्ञा, दूसरों को दुख देने का स्वभाव है उसकी प्रतिज्ञा, गिल्ट का स्वभाव बन गया है, अपराध भाव रहता है हमेशा कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये नेचर बन गई है उसकी प्रतिज्ञा। जो जो सूक्ष्म में आ गया सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही को दोषी ठहराना, एक होता है दूसरों को दोषी ठहराना, एक होता है खुद को दोषी ठहराने की आदत, ये भी बन जाती है, आदत जैसी हो जाती है। कुछ भी हो गया जीवन में, मैं मेरे वजह से हुआ, सेवाओं में नुकसान मेरे वजह से हुआ, परंतु ये इंस्योरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म देता है, अपराध भाव अंदर में सूक्ष्म ये सब होता है। इसके लिए प्रतिज्ञा करनी है, पी पी के बाद क्यू, क्यू अर्थात क्वेश्चन, प्रश्न। अमृत वेले से पहले ये रात नहीं, जीवन में जो एक प्रश्न है उसके प्रश्न को लेकर बाबा के सामने बैठो, इस संकल्प के साथ कि अमृत वेला पूरा होते ही उसका उत्तर मिल जाएगा। ऐसा एक प्रश्न ले लो कि जिसका कहीं पर भी समाधान नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी समाधान नहीं, इधर पूछा उधर पूछा, सेंटर पूछा, मधुबन में पूछा, सब जगह पूछा, परंतु समाधान नहीं मिल रहा है, ऐसा एक प्रश्न लेकर अमृत वेला बैठा, उस संकल्प के साथ कि बाबा इस प्रश्न का उत्तर मुझे देगा, और उत्तर आएगा। तो क्यों, क्यों के बाद आर, आर अर्थात रिलेशनशिप, सर्व संबंधों की अनुभूति उससे, एक एक संबंध की अनुभूति भगवान से, वो बाप है, टीचर है, सतगुरु है, राज बेटा है, बेटा बनाया है शिवा की माता बनाए, कितनी बार खिला दी माता अपने बेटे को, कितनी बार खिला दी, हाँ कितनी बार खाती है, उतनी बार खिलाती है, कुमारों ने बाबा को अपना बेटा बनाया है, ये बड़ा काम है, माताओं का तो ठीक है, कुमारों ने शिव बाबा को अपना बेटा, पिता होने का अनुभव थोड़ा कम है, बाबा ने कहा तो सर्व संबंधों से याद करो, सर्व एक भी संबंध की कमी अगर यहां होगी तो द्वापर से उसी संबंध के कारण दुख होगा, यदि अब उसको बेटा नहीं बनाया तो द्वापर से किसी ना किसी जन्म में बेटा के द्वारा दुख, अभी अगर उसको पति नहीं बनाया तो द्वापर से किसी ना किसी जन्म में पति की वजह से दुख, बहुत ही सूक्ष्म हिसाब है। यदि उसे मां नहीं बनाया तो मां के कारण दुख, पिता नहीं बनाया तो पिता के कारण दुख, मित्र नहीं बनाया तो मित्र से दुख हो, आगे बात एस अर्थात सेल्फ रिस्पेक्ट अर्थात समान, एस अर्थात समान, इसके तो चर्चा हम कर चुके हैं, कोई भी एक अच्छा समान ले ले और उसी पर सारा योग, एक समान मैं महान आत्मा हूं, कर्म महान, बोल महान, संकल्प महान, दृष्टि महान, वृत्ति महान, सब कुछ महान होना चाहिए, केवल इसी समान के साथ योग। एस एस के बाद टी, टी अर्थात थैंक यू, थैंक यू अर्थात धन्यवाद, उसने जो दिया है विराट है, और जो हम दे रहे हैं वो कुछ नहीं, उसका शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, ये सेंटर दिया, ये बहने दी, इसके लिए शुक्रिया, ये ब्राह्मण परिवार दिया, इसके लिए शुक्रिया, ये जो भट्टी है इसके लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया, अहो भाव कृतज्ञता से विधेय कर जाए कि तुमने क्या क्या कर दिया, हम क्या करें तुम्हारे लिए, ऐसा शुक्रिया का भाव। एस टी यू, यू अर्थात उत्सव, बाबा के साथ क्या करना है, उत्सव मनाना है अमृत वेला, उत्सव अर्थात फेस्टिवल कौन से उत्सव मनाएंगे? दिवाली, होली, हर दिन। दिवाली के दिन नहीं, हर दिन। हर दिन दिवाली, हर दिन होली, हर दिन न्यू ईयर, हर दिन शिवरात्रि। कब? अमृत वेला। हर दिन उत्सव मनाना। यू वी वी अर्थात
विक्ट्री,
वी अर्थात विक्ट्री, और वी अर्थात वर्णन। किसका? ये भी अच्छा है, कर सकते हैं। वर्णन करना, किसका वर्णन करना? गुणों का वर्णन, शक्तियों का वर्णन। बहुत अच्छा, ये पॉइंट तो हमने भी नहीं सोची थी। तो वी अर्थात वर्णन, वर्णन करना, उसमें विस्तार करना हर चीज का। और क्या करना? विवाह। बहुत सुंदर। क्या करना है अमृत वेला? बाबा से विवाह। और भारतीय पतिव्रता नारी के लक्षण तो पता है ना? यदि कोई पतिव्रता नारी परम पुरुष के प्रेम में पड़ जाए तो उसे क्या कहा जाता है?
बेवफा।
तो याद रखना कि हमारी शादी किससे हुई है? शिव बाबा से। वो एक ही पुरुष है संतान, बाकी सब क्रिया है। तो कुल कलंकित नहीं बनना है। विवाह बहुत सुंदर पॉइंट है। और जिसे कुछ विक्ट्री भी कहा, विजय का तिलक ले लेना। टी से तिलक भी हो सकता है। क्या करना है? टी से तिलक ले लेना। टी वी के बाद
डब्ल्यू
यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू था वर्ड, नए शब्द। जैसे नई भाषा कहा था वैसे नए शब्दों का प्रयोग करना ताकि कुछ नवीनताएं योग में। जैसे अभी ये सारे हम क्या कर रहे हैं, नए नए शब्द आ रहे हैं, तो नए शब्दों की वजह से नवीनता आएगी। वर्ड डब्ल्यू अर्थात वर्ड डब्ल्यू, उसके बाद डब्ल्यू एक्स। एक्स का बताना शायद आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। एक्स एक शब्द है इंग्लिश में, जेनियम। जेनियम अर्थात गिफ्ट। बाबा से कोई सौगात दे लेनी, जेड ई एन आई यू एम, जेनियम। जेनियम अर्थात अमृत वेला बाबा से कोई सौगात। कौन सी सौगात देंगे? कौन सी सौगात? खुशी की सौगात, आनंद की सौगात, झूमने की सौगात, नाचने की सौगात। और कौन सी सौगात देंगे इधर?
खुशी।
कौन सी सौगात देंगे बाबा से?
खुशी की सौगात।
डांस की सौगात? डांस की सौगात लेने की, ठीक है। और कौन सी सौगात देंगे?
हेल्दी लाइफ।
दस सौगात बताओ फटाफट। एक खुशी हो गया, खुशी मुस्कुराने की सौगात, खुश रहने की सौगात। तीसरा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करने की सौगात। रुको अभी भाइयों को बोल रहे कुमार बहुत है। हाँ हर्षित हो गया, खुश रहने में हर्षित आ गया।
हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ,
हेल्दी लाइफ की सौगात, हेल्दी लाइफ की सौगात। और दया करने की सौगात, क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दोनों आ गया उसमें। और दुआ देना और दुआ लेना, खुश रहना, खुश करना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। एक एक बड़ी बड़ी मुद्रिया है, एक एक टॉपिक पर ही है, आठ आठ पेजेस की। और कौन सी सौगात लेंगे? पवित्रता की सौगात, सबसे बड़ी सौगात। कौन सी? पॉजिटिव थिंकिंग की सौगात। और संस्कार मिलन की सौगात। झगड़े समाप्त। झगड़े होते रहते हैं एक दूसरे से, आंखों से झगड़े, भूखी से झगड़े, फोटो से झगड़े, गालों से झगड़े, चेहरे के हाव भाव से झगड़े, झगड़े होते रहते। तो संस्कार मिलन की सौगात है। फिर है वाय। वाय अर्थात योगी जीवन। अमृत वेला
योगी जीवन क्या होता है इसका चिंतन करना कि मैं एक महान योगी हूं तो क्या क्या मेरे पास होनी चाहिए। सिर्फ सत्य योगी हूं, मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ जय पराजय सब में जो समान है ऐसा योगी मैं हूं, ऐसा योगी जीवन मेरा है। विषय विकार वासनाओं से ऊपर उठा हुआ ये मैं हूं। और लास्ट में जेड, जेड अर्थात झील, झील अर्थात उमंग उत्साह एंथुसियाज्म। नया दिन है, नया उमंग, नया उत्साह, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया प्रभात, नया सूरज, नई मुरली, नया वरदान, नया प्रश्न, नई दिनचर्या, सब कुछ नया, नया स्लोगन, नए संबंध। सोचना है कि जो भी पुराना है आज सब
खत्म,
समाप्त, नया तो पूरा हो गया। एबीसीडी फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर क्लास को पूरा करते हैं। ए फॉर एम, बी फॉर ब्लेसिंग, सी फॉर कन्वर्सेशन, डी फॉर ड्रेस, ई फॉर एनर्जी, एफ फॉर फॉर्म, एफ आई आई फॉर इनसाइट, आई जे फॉर जर्नी, जे एच फॉर एल फॉर लैंग्वेज, एल एम फॉर मेकअप, एन फॉर नशा, एन ओ पी फॉर ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, पी फॉर स्लेच, पी क्यू फॉर क्वेश्चन, आर फॉर रिलेशनशिप, एफ फॉर कमांड, टी फॉर थैंक यू या फिर तिलक, वो वैसे मेकअप में भी आ जाएगा तो पर अलग से भी ले सकते हैं। एस टी यू फॉर उत्सव, वी फॉर वर्णन कहो या विवाह कहो दोनों ही आ जाएगा उसमें, या विक्ट्री कहो। वी यू फॉर उत्सव, यू वी डब्ल्यू फॉर वर्ड, जेड फॉर एक्स फॉर जेनियम अर्थात सौगात, एक्स वाई फॉर योगी जीवन और जेड फॉर झील, झील अर्थात उमंग उत्साह। तो सभी करेंगे अमृत वेला, शक्तिशाली होना चाहिए सबका, नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओम शांति।